وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على بحوله ودنا بطوله مانح كل غنيمة وفضل وكاشف كل عزيمة وأزل أحمده على عواطف كرمه وسوابق نعمه أؤمن به أولا باديا واستهديه قريبا هاديا واستعينه قاهرا قادرا وأتوكل عليه كافيا ناصرا جلت عظمته والصلاة والسلام على من جعله بشيرا ونذيرا وسراجا ومنيرا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف اللهم كل
وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة تغيرهم عاقلا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تغييرا برحمة
صلى على محمد ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليل ما تذكرون صلوات پڑھیے
محمد اللهم صل على محمد وعجل
دعا اور تقدیر کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے سپلیکیشن اینڈ فیٹ یا ایک پری ڈیسٹینیشن یہ ہمارا موضوع ہے بات کل تک یہاں تک آئی تھی کہ انسان کے اختیارات اور اس کے محدودات کیا ہیں لمیٹیشنز کیا ہیں اور اس کے پاس چوائسز کتنے ہیں آج میں ذرا سا موضوع کو اور آگے بڑھاتے ہوئے چند باتوں کی گزارش کروں گا دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو آفاقی ہے یونیورسل ہے اور اس کے میسیجز بھی یونیورسل ہیں کمیونل نہیں ہے اور مسلمان وہی ہے جو یونیورسل ہو کمین اللہ اور جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہم اتنے کمینل ہو چکے ہیں کہ حتیٰ مسلمان مسلمان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں حتیٰ مؤمن مؤمن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہر روز ایک نئی فکر آ رہی ہے نئے افکار پیدا ہو رہے ہیں اور ہر روز دیواریں ایک دوسرے کے درمیان کھڑی کی جا رہی ہیں انالائز کریں کہ آیا دین نے اس طرح کی بات سکھائی ہے آیا دین یہ چاہتا ہے ایک سلوات پڑھے محمد والے
محمد
آج سو کال یو این او انٹرنیشنل گزٹ کو پڑھیے یا کہ اس کے چارٹرز کو پڑھیے ہیومن چارٹرز کو اس میں پہلا چارٹر کا پہلا جملہ ہے جو قرآن سے لیا گیا ہر انسان کو فکری طور پر آزاد ہونا چاہیے، کوئی اپنے افکار کو دوسرے پر لاد نہیں سکتا. یہ پہلا ہے قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ماہ مبارک رمضان ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور کس کے لیے؟ ساری انسانیت کے لیے. یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے. انسان کو ایک دن آنا پڑے گا اس کتاب کے اندر، اور اسی کتاب کے ذریعے سے اس کو کامیابی مل سکے گی. سارے مسلمان، انسان تو انسان، مسلمان اس کتاب کے اندر. غیر تو غیر، اگر مسلمان اس کتاب سے قریب ہو جائیں تو انشاءاللہ کامیابی یقینی ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان جس پوائنٹ پر پہنچ چکا ہے وہاں پر کہیں پر یہ نہیں ملتا کہ وہ قرآن اور مکتب اہل بیت دین اسلام کی صحیح تعلیمات کے تحت وہ چل رہا. اس کے بعد کا بھی سلوگن ہے جی، علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے. بولیے، علی کی طرز زندگی منافقت کی موت ہے. زندگی محمد والے محمد، زندگی کی موت ہے. محمد والے محمد، میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو دیکھنا تو میں خود دیکھ لیجیے. سب بات پڑھیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگ اتنے الارمنس ہیں. بہرحال سنیے، میرے ساتھ رہیے. اب پراغ گندا ہو چکے ہیں مگر پھر میرے ساتھ ملمان کو جمع کروں میں. میرے ساتھ رہیے اور غور سے سنیے انشاءاللہ. اب ہو سکتا ہے کہ سیٹنگ ہو گئی ہوگا، اب ہو چکی ہے تو آپ لوگ آرام سے بیٹھیں. سلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیے میری مثال کو غور سے دیکھیے، اور اس سے پہلے بھی میں نے یہ مثال پیش کی تھی، بہترین مثال ہے. اگر ہمارے بچے جیومیٹری پڑھتے ہیں، قانون یہ ہے کہ دو پیرلل لائن اگر جا رہی ہیں، اگر ایکولی جا رہی ہیں، تو اگر ایک لائن ایک زاویے سے 1 سینٹی میٹر ہٹ جائے تو جتنی آگے بڑھیں گی اتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا. اس سے آبویس چیز ہے، جیسے ٹرین کی دو پٹڑیاں ہیں، اگر ایک پٹری ایک زاویے سے ہٹ جائے تو جتنا آگے بڑھیں گے وہ دونوں میں جدائی بڑھتی چلی جائے گی. ریکٹیفیکیشن کا، اس کو صحیح کرنے کا سلیقہ کیا ہے؟ گو بیک ٹو دا پوائنٹ ویئر یو ڈیویٹڈ، اس مقام پہ چلے جاؤ جہاں سے تم ڈیویٹ ہوئے تھے. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے سرکار نے فرمایا جو آگے بڑھ گئے ہیں، یعنی ولایت اور رہبری وہ ایک ایسا نقطہ ہے جس سے ڈیویٹ ہونے کے بعد نہ آگے رہنے سے کامیاب ہو سکتا، نہ پیچھے رہنے سے کامیاب. سب سلوات پڑھیے محمد والے محمد. ہمارا مسئلہ ہے ڈیویشن کا. بہت اچھی بات کہی ہے اقبال نے، بہت اچھا کہا ہے. 1400 تقریباً 100 سال کے پہلے جو باتیں اس نے کی ہیں، اگر اس پر مسلمان عمل کیا ہوتا، سرکار کی باتوں پر عمل کیا ہوتا، نہ جانے کہاں پر ہوتا. تم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. آج ہماری ذلت جو ہے तारीख़ कुरान, कुरान बोलते हैं किसी में झूमता भी नहीं कोई है, और हुसन मकतब अहले बैत वाले उसी तरह से झूमना है जिस तरह से अली का नाम लिया है, इसलिए कि कुरान और मौला अली में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों चीजें साथ साथ हैं। जितने फजाइल अहले बैत के हैं उतने ही फजाइल कुरान के हैं, जितने फजाइल कुरान के हैं उतने ही फजाइल अहले बैत के हैं। तो रेक्टिफिकेशन का वाहिद तरीका, हमारी गलतियों का वाहिद तरीका यह है कि हम लोग जाएं जिस डिविएशन पॉइंट पर हम डिविएट हो गए हैं उस पॉइंट पर। पहला पॉइंट है कुरान, रोजाना कुरान की तिलावत करें और इंशाल्लाह कुरान से हमें सबक मिलेगा। ये वो किताब है जिसके सिलसिले में खुद सरकार ने फरमाया, कुरान में मौजूद है ये आयत फुरकान, सूरह फुरकान कुरान का 25वां सूरह है, उसकी 30वीं आयत है, वह यकूल रसूल या रब्बी इन्ना कौमी इत्तखदु हादल कुरान महजूरा। सरकार ये फरमाएंगे रोज कयामत, परवरदिगार मेरी कौम, कोई और नहीं, मेरी कौम ने इस कुरान से दूरी बन दी, यानी डिलीबरेटली ये लोगों ने जुदा कर दिया। चुनांचे हम अपनी जिंदगी में देखते हैं बच्चे को पढ़ा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा दिया, इंग्लिश जानना जरूरी है, बगैर इंग्लिश की कामयाबी नहीं हो सकती, अगर तुमको जॉब चाहिए जानना चाहिए, बेहतरीन चीज है लैंग्वेजेस, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जितना एम्फसाइज हमने उस पर दिया, अगर उसका 1% कुरान पे दिया होता तो हमारी आज ये हालत ना होती जो आज जिस मुकाम पर हम पहुंच गए हैं। तो हमें जरूरत है कि हम जब जाएं पीछे रेक्टिफाई करें। कुरान देखिए, आज मैं जिन बातों का अर्ज कर रहा हूं जरा से बहुत अहम है, और कुरान ने आवादा दिया कि अम्मा युजीबुल मुद्दतर्रा इदा दा वयक्षिफुस्सु वयजअलुकुम खुलफा अल अर्द। कौन है जब तुम्हारी परेशानियों में और तुम्हारे रंजो गम में जब तुम पुकारो तो तुम्हारा जवाब दे, सिवाय जात परवरदिगार के कोई नहीं। अच्छा खासा आवाज थी, बदन बंद भी कर दिया उसको। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। चलिए सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह ये होती रहेंगी। आप लोग हमारा अजीज जी के गांव आमदो खर्रा, सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बरादरान अजीज, दीन को वहां से लीजिए जहां दीन बता रहा है, दीन को गैर दीन से नहीं ले सकते, रिलीजन को जहां से लेना है वहीं से लेना है, इसलिए कि रिलीजन का एक मकाम है और इसकी ओरिजिनलिटी है, उसकी एक असल है, उस असल से हम लोग हट जाएंगे तो हमारे पास दीन मिलने वाला नहीं। कुरान ये कह रहा है कि परेशान हाल इंसान अगर पुकारेगा ज़ाते परवरदिगार को सिवाय ज़ाते परवरदिगार के, कोई भी उसकी परेशानियों से नजात नहीं दिलाएगा, न सिर्फ उसकी परेशानियों से नजात दिलाएगा बल्कि इंसान को उसका खलीफा भी नहीं बनाएगा। मैंने बताया था दूसरी मजलिस में, इंसान आया है टू रिप्रेजेंट अल्लाह सुबहानहु तआला, उसका किरदार, उसके अखलाक, उसकी वकार ऐसा होना चाहिए लोग उसको देखकर समझे कि कोई ना कोई सिफत परवरदिगार उसमें मौजूद है, रहमान है, तो ये भी रहीम है, बीवी बच्चों के साथ, महल्ले वालों के साथ, उसके दिल में नफरतें नहीं है। हमारे पास आज जिस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं उसकी वजह क्या है? कहते हैं कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड नेपोलियन जब पहुंचा था इजिप्ट में, मिस्र को जब पहुंचा है और जामे अजहर में दाखिल हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ अजहर, आपको मालूम है मुसलमानों की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है हमारी नजफ की, उससे ओल्ड कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, और उसके बाद अगर ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है तो जामे अजहर है, बरादरान अहले सुन्नत की, एक जमाने तक उसके असरात थे, आज वह हाईजैक हो गई। बहरहाल जामे अजहर में जाता है, वहां पर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में इशारा करता है किताब की तरफ, इत्तेफाक से वह किताब कुरान निकलती है, कहता खोलो, जब खोला तो ये आयत निकलती, इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही या अकवाम, ये वो कुरान है जो सबसे सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है। देखिए अप्रोच कुरान का कितना खूबसूरत है, दूसरे रास्तों को कंडम नहीं कर रहा है, मुमकिन है कि दूसरे रास्ते भी खुदा तक पहुंचा रहे हों, लेकिन ये वो रास्ता है जो सबसे सीधा है, ये नहीं, यही सिराते मुस्तकीम है, ये सलीका है कुरान का, सलीके अहले बैत है। चुनांचे इमाम मोहम्मद बाकर अलैहि सलाम सदे इमाम के जमाने में, ये दो इमाम के जमाने में बहुत से आइडियोलॉजी स्प्रिंग हुए, बहुत से आइडियोलॉजी उभरे, क्यों उभरे उसकी वजह है, नंबर वन 100 ईयर्स तक बैन था अहादीस के लिखने का। फिक्री तौर पर लोग बहुत महदूद थे, जो बहुत महदूद अहले बैत से जो मरबूत थे उन लोगों के पास ही थोड़ा कुछ मौजूद था, वरना जनरल पब्लिक को कुछ मालूम नहीं था। जब मौजूद खुला आजादी मिली, लोग एक्सप्रेस करने लगे अपने अफकार को, अपनी आइडियोलॉजी की। बाज लोग दहरिया बन गए, दहरिया से मुराद मेटेरियलिस्ट, यानी रिलीजन को भी नहीं बिलीव करना। छठे इमाम के जमाने में मोमिनीन में भी दो तरह के ग्रुप बन गए, बल्कि पांचवें इमाम से शुरू हुआ ये सिलसिला, शुरू हुआ 11वें इमाम तक। एक का नाम है मुफवेजा, एक का नाम है गाली। मुफवेजा कौन है? जो बिलीव करते हैं कि अल्लाह ने पूरी कायनात बनाई, अब अल्लाह रिटायर्ड हो गया है, अहले बैत के हाथ में स्टेयरिंग दे दिया, अब अहले बैत कायनात को चला रहे हैं। चुनांचे आज भी बहुत से मेंबरों से इसी तरह के अफकार पेश करने की कोशिश की जाती है कि अब अल्लाह कुछ भी नहीं कर रहा, जो कुछ कर रहा अहले बैत कर रहा। इस तरह की फिक्र किसी अहले बैत के किसी फर्द ने नहीं दी है। नहजुल बलागा अगर आप ये खुतबा पढ़ लें तो पता चल जाएगा तौहीद के किस मंजिल पर इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम है, जिसका अंदाजा हम लोग कर भी नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला यबलुगु मिन्हातहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़हुल मुज्तहिदून। पहला खुतबा ही काफी है अहले बैत के किरदार और अफकार को समझने के लिए। मगर हुआ, हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसलिए कि जहालत हमारे पास इतनी बढ़ा दी गई है, हमारे अपने रिलीजन से मुतालिक हमको कुछ मालूम नहीं है। जहां से मालूम होना चाहिए वहां भी हमारे पास सिवाय वो चीजें जो मुमन कोल्हू का बाय जिसको कहते हैं, उसी चारों तरफ रस्सी में खस दिया गया। हमें उससे बाहर जाएंगे तो अरे ये तो दीन की बात नहीं है, ये बहुत बड़बड़ बहुत गड़बड़ कर रहा है, इसको जो है बंद कर दिया जाए, इसकी आवाज को बंद कर दिया जाए। ये बात इस्लाम ने नहीं सिखाई है। इस्लाम कहता है ला इकराह बिद्दीन कद तबैना रुश्दो मिन अलगाई। दीन में कंपल्शन नहीं है, दीन में जबरदस्ती नहीं है, दीन में तिबियान है, मैनिफेस्टेशन है। हर इंसान को हक है। मैं यहाँ पर लिखने वाले लिख भी रहे हैं, यहाँ पर मौजूद है, इंडियन फोर्सेस यहाँ पर मौजूद हैं, उनके सामने गुजारिश करूंगा कि दीन का ये पैगाम दीजिए, दीन इस्लाम ने जो आजादी इंसान को दी है किसी मकतब फिक्र ने नहीं दी। ला इकराह फिद्दीन कद तबैना रुश्द मिनल गाइड। दीन में कोई कंपल्शन नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, दीन में सिर्फ प्रेजेंटेशन है। हत्ता मुझे बाकरी को हक नहीं है कि यही आइडियोलॉजी है तुम मानो सो मानो, मेरा काम है सिर्फ मैनिफेस्टेशन प्रेजेंटेश करना, और आपका हक है हर अच्छी चीज को लेना और जो अच्छी नहीं है उसको छोड़ देना। फबशिर इबादिल लदीना यस्तमिउन अलकौल व यत्तबिउन अहसना। मुबारक दो, मुबारकबाद दो उस बंदों को जो कौल को गौर से सुनते हैं। मजलिसों को गौर से सुनिए, अच्छी चीज ले लीजिए, जो अच्छी नहीं है वो आपसे मरबूत नहीं है, कुरान से जो मरबूत नहीं है, हदीस से जो मरबूत नहीं है, अहले बैत से जो मरबूत नहीं है, उसका राबता हमसे नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। बाज लोग मोहब्बत अहले बैत के नाम से ऐसी बातें कर जाते हैं कि मोमिनीन डर जाते हैं। कुरान ये आवाज दे रहा है हमें डरने की जरूरत नहीं, हकायक दीन को अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश करें। हकीकत दीन जितनी वाज़ह होती चले जाएगी आपको अमल करने में उतना ही मजा आता चले जाएगा। आज की यूएनओ के चार्टर में मौजूद है, हमारे पास अहले बैत का किरदार मौजूद है। मैंने कल इशारा किया था मौला मिलमुन की 25 साल गस्ब खिलाफत के बाद वो हुकूमत के जमाने में मौला ने जो जिंदगी बसर की है वो हमारे लिए नमूना है, बेहतरीन एग्जांपल है। 25 ईयर्स 3 खुलाफा के साथ मौला एज एडवाइजर काम करते हैं, इसलिए कि मसला इनका नहीं था, मसला दीन का था, दीन इस्लाम पर काम होना था। अगर इनका मसला होता तो तलवार निकल सकती थी, मसला इनका नहीं था, दीन खत्म हो जाता था। मौला अली ने कहीं पर किसी मकाम पर वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए हैं जो कर रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए जो गाइड कर रहा है, जो रहबर है, जो विलायत रखता है, वो हुक्म दे रहा है तमाम इंसानों को, इन बातों में मत फंसिए, इसलिए कि बातिल चाहता है हमको बांटने के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जिससे हम लोग गर्दिशों में आ जाएं। मिसाल देता हूं, मैं अच्छी तरह से सुनिए और मैं बहुत ओपन बात करता हूं। गुजशत मैंने 3 दिन पहले एक मजलिस में इशारा किया था, उसमें किसी ने कहा अच्छा आप ये हुक्म दे रहे हैं कि अच्छा जियारत वारिसा भी ना पढ़े या जियारत आशूरा भी ना पढ़े, किसने का ना पढ़े और किसने दम है कि जिस तरह से اہل بیت نے تعلیم دی ہے اس سے ہٹ کر تم کام کرو. اب آئیے اگر جتنے خطبان ہیں بہت بڑی بڑی بات کرتے ہیں, بڑے تبرائی مجلسیں پڑھتے ہیں, ان سے میں چیلنج کرتا ہوں, ہمت ہے تو تینوں کا نام لے کر کے لعنت پڑھو ممبر سے. جس دن پڑھو گے دوسرے دن تم بند ہو جاؤ گے, تب پتا چلا کہ تم اپنی پالیسی کو بچانے کے لیے, اپنے ممبر کو بچانے کے لیے تم ممبر پہ وہی کام کرتے ہو جو تمہارے فائدہ کا ہے. جب دین کہتا ہے سلام پڑھی محمد والے محمد تو آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور تبرہ میں نے بتایا تھا پہلی مجلس میں دو انرجیز ہیں, ایک انرجی کا نام ہے پازیٹیو, ایک انرجی کا ہے نیگیٹو. پازیٹیو انرجی کو اٹریکٹ کیجیے, نیگیٹو انرجی کو ریپلس کیجیے. خدا نے صلاحیت دی ہے جاذبہ اور دافعہ, اٹریکٹ کرنے کی قوت دی ہے اور ریپل کرنے کی قوت دی ہے. اٹریکٹ کیجیے انرجی کو, کون سی انرجی؟ پازیٹیو انرجی. قرآن اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, پازیٹیو انرجی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, پروردگار نام لے لے کہ نام لے کر کے میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا, حقائق کو واضح کرتا ہوں, تو تلاش کر کے کون کون کمار کریے محمد والے محمد. آئیے زیارت زیارت عاشورہ کا جو حوالہ دے رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یاد رکھ لیجئے کہ ہر انسان تبرہ کرتا ہے, ہر انسان تبرہ کرتا. تبرہ کیا ہے؟ بروں سے دور رہنا, برائی سے دور رہنا. حتیٰ ہندوئزم سے بھی پوچھئے کہ برائی اچھی ہے, بولیں گے نہیں اچھی ہے. جو ریلیجن نہیں رکھتے ان سے پوچھئے کہ برائی اچھی ہے, وہ کہیں گے برائی اچھی نہیں ہے. برا اچھا ہے کہ برا بھی اچھا نہیں ہے, تو برائی بھی اچھی نہیں ہے, برا بھی اچھا نہیں ہے. نیگیٹو فورس ان کے ساتھ ہم رہنا نہیں چاہتے, صاف ہر ایک آدمی اعلان کرتا. تو معلوم ہے انسانی فطرت میں اچھوں سے محبت, بروں سے نفرت فطری ہے. اس کو کوئی بتائے نہیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر بچے کے سامنے کوئی دوسرا بچہ تماچا مارے, جس نے مارا تماچا یہ بچے کے دل میں اس سے نفرت آئے گی, جس نے تماچا کھایا ہے اس سے محبت آئے گی. ظالم سے نفرت, مظلوم سے محبت فطری ہے. تو یہ فطرت کو آپ بدلنے کی کوشش مت کیجیے, اسلام نے اس طرح کی بدلاؤ نہیں ہے. اب آئیے زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ میں اللہم لعن اول ظالمین ظلم حق آل محمد. پروردگار اے معصوم, آپ زیارت پڑھ رہے ہیں, نام لے لیجئے, کیوں کہہ رہے ہیں اول دوم ثانی؟ تو اور اسی طرح سے اگر کسی میں دم ہے تو لے لو نام. توجہ کا تعلیم ہوں, ممبر کو پڑھ کر کے بول لو نام, دیکھیں کیا ہوتا ہے تمہاری مجلسوں کا, تب پتا چلے گا کہ حقیقت کیا ہوگا, کتنا تمہارے پاس ایمان ہے اور کتنا تمہارے پاس دم ہے. تو صرف عام انسانوں کو, عام سادے سیدھے مومنین کو بیوقوف بنانا اور ہے, دین کے حقائق کو بیان کر کے حقیقت بتانا اور ہے. صلوات پڑھی محمد علیہ وسلم. حیات منت ضلع, بولیے حیات منت ضلع, آج مومنین کو بانٹا جا رہا ہے, حیات منت ضلع. آج مسلمانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے, آج انسانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے. کربلا دائمی آواز ہے, کربلا وقتی آواز کا نام نہیں. باتوں کو بہت اچھی طرح سے فہم کے ساتھ اور ادراک کے ساتھ, ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ طبقہ ہے, ماشاءاللہ بہت سے لوگ پڑھے لکھے یہاں پر موجود ہیں, یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, کالجز میں سب لوگ ماشاءاللہ پڑھے ہوا مجمع ہے. آپ لوگ اندھے مت بن جائیے, دین کے بارے میں بہت آنکھیں کھول کے رکھیے, اس لیے کہ مجھے بھی بولنے کا حق ہے, دوسرے کو بھی بولنے کا حق ہے. مجھے جو حق دیا گیا ہے وہ کوئی میرا چھین نہیں سکتا, دوسرے کو جو بولنے کا حق دیا گیا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا. لیکن میں جو بولوں گا قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں بولوں گا, اور اتروں گا میں اس وقت تک جب تک کہ اہل بیت میرے کلام سے راضی نہ رہیں, اس لیے کہ اہل بیت اس سے راضی ہیں جو کلام اہل بیت کو اسی طرح سے پریزنٹ کرے جس طرح اہل بیت چاہتے ہیں. اب آپ کو مثال دیتا ہوں, دیکھیے اچھی طرح سے مثال دیکھیے, ہے میرے ساتھ آپ لوگ نہیں ہیں؟ سلوار پڑی محمد والے محمد. شہر و رمضان الذی, ماہ مبارک رمضان, وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. उसके बाद क्या कहता कुरान, हुदल्लिन नास, हुदल्लिन मुस्लिमीन नहीं है। अब लेके जाइए कुरान, ये कुरान ये कह रहा है, कुरान नाजिल हुआ कहने के लिए, इंसानों की हिदायत के लिए। तो मालूम है हमारा अप्रोच जो होना चाहिए यूनिवर्सल होना चाहिए, इंसानियत की बात होना चाहिए। इन मजलिसों में हिंदू आना चाहिए, सुन्नी आना चाहिए, हर मकतब का आना चाहिए। ये दस्तरखान इमाम हुसैन है, यहाँ नूर मिलता है या बरकतें मिलती हैं, और यहाँ से इंसान इंसान बनकर के उठता है, नफरत नहीं मोहब्बत लेके उठता है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, देखिए मैं ये कुरान के हदीस, ये कुरान और आइए हदीस, हदीस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की, अल्लाह जब ये हदीस में पढ़ता हूँ मेरे आंखों से खून निकलता है। हदीस में मौला फरमाते हैं लौ आलिमुन्नास वहुदल्लिन्नास, कुरान कहता हुदल्लिन्नास या मौला फरमा रहे हैं लौ आलिमुन्नास, अगर लोग, लोग से मुराद जनरल पब्लिक गैर मुस्लिम, लौ आलिमुन्नास हो महा से ना कलाम ना, हमारे हुस्न कलाम से इंसान वाकिफ हो जाए, लत्तबुउना वो हमारी इत्तबा करे। यानी अहले बैत के कलाम में इतना दम है, इतना अट्रैक्शन है कि वो आम इंसानों के सामने पेश किया जाए तो वो सजदा करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर हमारी ऐसी मजलिसें हो गई हैं मोमिनीन शरीक होने के लिए तैयार नहीं, तो कहाँ है हम लोग, कहाँ है अहले बैत, कहाँ है कुरान, कहाँ है हम, कहाँ है, क्यों हमको, किसने हमको इस मकाम पे पहुंचा दिया, आप गौर करें, और कौन है वो जो इस मुकाम पे हमें ला रहा है, और किसकी जिम्मेदारी है इन मुकामात से बेदार होकर के हमें उठना है और दुनिया के सामने अहले बैत की जो तरबियत है, अहले बैत की जो तालीम है उसको प्रेजेंट करना है। कैसे प्रेजेंट करें, हम प्लेन हो जाएं। देखिए दो तरह के ऐनक है, अगर आपने काली ऐनक गॉगल्स लगा ली गर्मियों में हर चीज काली नजर आएगी, ठीक है, या रेड ऐनक लगा लीजिए हर चीज रेड नजर आएगी। अगर कोई मफहर की ऐनक लगा ले हर चीज उसी आइडियोलॉजी के थ्रू देखता है। अगर आप चाहते हैं कलर को क्लियर देखिए, क्लियर ग्लासेस लगाइए, फूल का रंग भी पता चल जाएगा, कांटे का काटा भी पता चले। इस्लाम चाहता है कि हम लोग क्लियर ग्लास लगाए, हमको इम्पोज ना किया जाए, और मेंबर रसूल को जैसे कि रसूलुल्लाह ने बताया है उसी तरह से प्रेजेंट करें जिस तरह से रसूलुल्लाह ने अहले बैत अलैहिस्सलाम ने पेश किया। मिसाल चंद चीजों की मिसालें चाहिए और मिसाल लेकर के जाइए। पांचवें इमाम के जमाने में, छठे इमाम के जमाने में क्या हुआ, मुफवदा ग्रुप, मुफवदा वो जो ये ग्रुप मानता था कि अब अहले बैत चला रहे हैं दुनिया को, कोई नहीं चला रहा है, यानी खुदा रिटायर हो चुका है, ये लोग काम कर रहे हैं। दूसरा ग्रुप था गाली का, यानी इस तरह से फजाइल अहले बैत बयान करते थे कि शुबा होता था कि खुदा है। इन दोनों से फाइट किया है अहले बैत ने। मुसलमानों के दरमियान वो लोग भी थे जिनको मादियन कहते हैं, मेटलिस्टिक कहते हैं, यानी जो लोग बिलीव करते थे मरने के बाद ना कब्र है ना सवाल है, ये सब मौलवियों की चक्कर है, ये सब इनकी चक्कर है उनकी चक्कर है, ये बातों में मत जाओ, हैव फन मैन, मजे उड़ाओ और चले जाओ यहाँ से, जो करना है करो। इस तरह से आज ये कहा जा रहा है, जो चाहे करना करो, दो चीजें कर लो, उसके बाद सलाह पड़ी वहां मनवा ले। इसका नाम है मेटेरियलिस्ट। देखिए अप्रोच कितना खूबसूरत है, मैं मिसाल मेरे नौजवान बच्चों को देता हूं, मैं आप इस मिसाल को लेकर के जाइए, वी शुड लर्न फ्रॉम अहलुल बैत, इससे बेहतर कोई अहल सलीका नहीं है जिस तरह से अहले बैत ने प्रेजेंट किया। देखिए चार अब्दुल्ला, नन अब्दुल अब्दुल्ला, अब्दुल्ला नाम था कोई अब्दुल्ला नहीं था, यानी अब्दुल्ला के माने अल्लाह का बंदा, मगर सब के सब मेटेरियलिस्ट थे, मादिगीन थे जो खुदा ही को बिलीव नहीं करते थे, मगर नाम थे अब्दुल्ला। तो मालूम नाम रखने से कुछ नहीं होता, किरदार भी होना चाहिए, फिक्र भी होना चाहिए उसी तरह की। अब्दुल्ला इब्न अबी रौजा, अब्दुल्ला इब्न अबी नदीर, चारों अब्दुल्ला आते हैं, खाने काबा तवाफ हो रहा है, मुसलमान तवाफ कर रहे हैं, और मालूम है जब तवाफ करते हैं कितना जोश वलवला होता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरत हसना, ऐसा मालूम होता है करंट घूम रहा है, एक अजीब समा रहता है जब तवाफ खाने काबा में। सब हो रहा था, ये खड़े रह के कह रहे थे ये बेवकूफ कह रहे हैं ये खुदा का घर है, चारों तरफ फिर रहे हैं, इससे ज्यादा बेवकूफ कोई हो सकता है? एक अब्दुल्ला ने कहा नैना एक उसमें बहुत स्मार्ट है, कौन? जाफर इब्न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज्जल इमाम है जाफर सादिक की तरफ, चुनाचे चलो मिलेंगे, ऐसी बात है तो वो स्मार्ट भी थे, पढ़ना भी चाहते थे, लर्न भी करना चाहते थे। एक मतलब रिजिडनेस है, एक मतलब ओपननेस है, एक मतलब आइडियोलॉजी को मैंने बना दिया बस उसी में महदूद है। मैंने बताया था ना भाई ककून मैंने बना दिया फिक्र की और उसे उड़ना नहीं चाहता हूं, ये अच्छा नहीं है। आप ओपन रहिए हमेशा, बापरी को भी सुनिए, हर एक को भी सुनिए, सुनिए अच्छी चीज को लीजिए, कभी ये ना करे कोई आपको बंद कर दे, आप ओपन रहे, आपका माइंड ओपन रखें और ओपन सुनिए तो मजा आपको आएगा। एक मरतबा वो भी लाइन में लग गए इमाम से सवाल करने में, बहुत से सवाल आप कर रहे थे, क्यों लगी हुई थी, आखिर में इनका टर्न आया। कौन है ये लोग? ये दहरिये हैं, मेटलिस्ट है, जो बिलीव करते हैं देर इज नो गॉड, देर इज नो नथिंग, कब्र में कुछ होने वाला नहीं है। इमाम का अप्रोच देखिए, इमाम ने जो अप्रोच पेश किया है उसकी साइकोलॉजी में नाम है दफ ए जरर मुहतमल। दफ ए जरर मुहतमल के माने क्या है? इंसान में फितरतन एक चीज है कि वह आइंदा बड़े नुकसान से बचना चाहता है, वह छोटे नुकसान को दे देता है। मिसाल देता हूं बहुत आसानी से, इंश्योरेंस, कार लिया आपने, इंश्योरेंस लेना जरूरी, अरे भाई हर एक कार का एक्सीडेंट थोड़ा हो और थोड़ी और आया, कहना अगर हो गया तो क्या, वो अगर इतना महंगा है कि महीने को 2-4 हजार देना है। अगर, अरे भाई हर एक कार एक्सीडेंट नहीं हो रही यार, ना हो मगर अगर हो गया तो अकल ये कह रही है कि थोड़ा नुकसान दे देना अच्छा है बजाय ऐसे कि बड़े नुकसान को दें बाद में 4-5 लाख की गाड़ी हाथ से निकल जाएगी। अकल कह रही है कि नहीं कह रही है? और सब दे रहे हैं और इत्मीनान से दे रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है कि सही नहीं है, ठीक है। ये क्यों? फितरतन इंसान में मौजूद है कि दिफा करता है आइंदा आने वाले बड़े नुकसान से। इमाम ने फरमाया देख एक तुम हो एक मैं, ठीक, तुम ये बिलीव करते हो कब्र नहीं है, सवाल नहीं है, कोई मलक नहीं, कुछ नहीं, मैं बिलीव करता हूं अल्लाह है, कब्र है, सवाल है, मेरे अमल सब निगरानी है, ज्यादा परवरदिगारी की निगरानी में चल रहे हैं, हम दोनों मर जाएंगे, अगर वहां कुछ नहीं है तो हम दोनों बराबर हुए। अजी कब्र में अगर कुछ नहीं है तो हम दोनों बराबर हो गए, तो इसके माने ये है कि ज्यादा से ज्यादा कि मैं एंजॉय नहीं किया, तुमने एंजॉय कर लिया, ठीक है, मैंने एंजॉय नहीं किया। उसके बाद मौलाना ने कहा 50-50 चांसेस हैं, इधर है या नहीं है, अगर नहीं है तो हम दोनों बराबर, अगर है तो तुम्हारा क्या होगा? वापस पलट के तो आ नहीं सकते और अमल करके वापस नहीं जाते। इंशाल्लाह कुरान ये कहता गया और जहूनी लहली अमल सालेह, ए परवरदिगार हमें वापस कर दे ताकि नेक अमल करके वापस आए। खुदा कहेगा झूठा, जिंदगी में कितने मरतबा उसने वादा किया था ये वही करके आएगा, जो करके आया है कुछ बदलने वाला नहीं है। तो 50-50% चांसेस, इधर वहां पर कुछ है या कुछ नहीं है, अगर है तो क्या होगा तेरा? सब लोग सर झुकाए, कोई जवाब ही नहीं था, तब सबों ने कलमा पढ़ा। तो ये कौन है? ये है इल्म, जबरदस्ती लानत मलामत करके धुतकारा नहीं, इल्म दिया। पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद, देखिए इसको एनालाइज करने के बाद मैं आपको आ जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे कहेंगे 50% चांसेस हैं। जी नहीं, हम लोग आप गवाही देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी हम 50% पे काम नहीं कर रहे हैं, 100% पे काम कर रहे हैं। मैं गवाही देता हूं अगर मेरा गला भी कट जाए तो मैं अशहदु अल्लाह, शहादत के माने ही गवाही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके बाद अशहदु अन्ना अलिया वलीउल्लाह। तो मैं नौजवानों से, तमाम बुजुर्गों से, मैं हमेशा से कहूंगा कि मजहब मत रखिए, हैव फन, दीन मत रखिए, मजे उड़ाइए। अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा तो इसके माने कि आपने लॉस को अपने गर्दन पे लाद लिया, आपने पढ़ा है फ्रीडम के साथ, अगर यहीं पर रुक जाते तो बहुत अच्छा था। आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, आपने इस्लाम को कबूल कर लिया, यहीं पे रुक जाइए तो मुमकिन है और आजादी रहे जी। आपने अली वलीउल्लाह कहा, तो यहीं पर मैं ये शेर हमेशा से पढ़ता हूँ, यहाँ दस्तोपा कटेंगे यहाँ जान पर बनेगी, ये मोहब्बत अली है कोई दिल लगी नहीं। ये मोहब्बत अली है कोई दिल लगी नहीं है। अगर अहले बैत साहब कहते हैं अगर अमरोना साबुन मुस्तासब, हमारा हुक्म मुश्किल है, मुश्किल को मोल लेना है, मुश्किल है और मुश्किल को मोल लेना। मैंने 59 कंट्रीज में बहुत अच्छी चीज है, जरा सा पढ़िए, पहले रोजाना कुरान पढ़िए 10 आयतें रोजाना ट्रांसलेशन के साथ, ट्रांसलेशन के साथ जरा पाउंडर करके टीवी हजरत टीवी रजी अल्लाह अनु तआला को बंद करके और जमात के साथ जो टीवी देख रहे हैं घर में जमात के साथ कुरान पढ़िए, आप एक आयत, बीवी एक आयत, बच्ची एक आयत, ट्रांसलेशन के साथ पढ़िए 10 आयतें, घर में नूर आएगा, फिर आप जुल्मतों में नहीं रहेंगे, आपके पास रोशनी आएगी। उसके बाद आगे बढ़िए, एक हदीस पढ़िए, एक हदीस, एक हदीस, एक कुरान, एक नहजुल बलागा का एक कौल, खुतबे का एक पोर्शन, देखिए आप में कौन सी सलाहियतें पैदा होंगी इंशाल्लाह। उसके बाद आपको कोई इधर उधर भटका नहीं सकेगा, आपके पैटर्न पर कोई चल नहीं सकेगा, इसलिए कि आप इल्म है। इसीलिए मौलाना फरमाया था सलूनी सलूनी मुझसे पूछो। कॉन्फ्रेंस में थे हम, मैंने कहा या नहीं बता, फिर भी सुनाऊंगा अच्छी चीज। तेहरान में कॉन्फ्रेंस थी, उसमें डॉक्टर तिजानी, मालूम है डॉक्टर तिजानी जिन्होंने मकतब अहले बैत को कबूल किया, सलावत पढ़ी मोहम्मद वाले इन्होंने 6 किताबें लिखी और इनके तबलीग आपका ये आलम है, सलावत इनके तबलीगात का ये आलम है। फ्रांस के करीब एक विलेज है जिसमें अक्सर बरादरान अहले सुन्नत रहा करते थे और इन्होंने अपनी तबलीग के जरिए से सबको मकतब अहले बैत का कर्मदार बनाया और हर मरतबा आते हैं, एक दो फैमिलीज को फ्रांस से लाते हैं करबला वगैरह की ज्यारत के। कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन्होंने एक जुमला कहा जो मेरे दिल को हिला दिया। उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र है कि मैंने इमामों को पहले देखा बाद में शियों को। ये नहीं लगता है कि अगर मैं पहले शियों को देखता तो कभी ये तमाचा है हमारी जिंदगी पर और ये बेदार होने का पॉइंट है। खुदा का शुक्र है कि मैं पहले इमामों को देखा बाद में शियों को देखा, अगर मैं शियों को देखता तो शायद मैं इस मकतब को कबूल ना करता। क्या कह रहा है ये जुमला, वो कौन है ये शख्स जिसने हजारों को मकतब अहले बैत का जरीदा बनाया, जिसने किताब लिखी है अहलुल बैत हल्लाल मुश्किलात, अगर मुश्किलात का हल करना है तो दर अहले बैत पे जाओ। मिसाल दी है उसने, एक छोटी सी मिसाल दी है, अगर लंदन एयरपोर्ट पर 200 मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए खड़े हों तो क्या हशर होगा, वजू खाने का या कि वॉशरूम का, 200 मुसलमान वजू कर रहे हैं तो क्या हशर होगा, अगर वहां पर 2000 मकतब अहले बैत के परवाने जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं समझे आप लोग, समझने की कोशिश कीजिए, जो तरीका अहले बैत ने हमें सिखाया है तो ये अप्रोच है, खूबसूरत अप्रोच जो लॉजिकली जाता है। वो खुद एक सुनाता है कि मैं एक कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए लंदन जा रहा था, मेरे साथ एक बरादरान अहले सुन्नत के आलिम थे, तकिया पे गुफ्तगु हुई, व्हाट इज तकिया, मैंने कुरान की आयत से समझाया कि तकिया इज पार्ट ऑफ इंसानी बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर है और हजरत मूसा के जमाने में वो मोमिन का तस्करा है जिसमें उसने तकिया किया, मगर उनके समझ में नहीं आया। उतर गए, जब बाहर निकले हम दोनों इमिग्रेशन से, मैंने उनसे पूछा आपने इमिग्रेशन वाले जो सवाल किए थे काय के लिए लंदन आए तो क्या जवाब दिया आपने, जी पूछा कि अभी जो तशरीफ लाए बंदर आप आए, अब ये बताइए कि इमिग्रेशन वाले ने आपसे पूछा कि आप लंदन क्यों आए हैं तो क्या कहा आपने, کہ میں خاندان والے ہمارے رشتے دار ہیں ان سے ملنے کے لیے. کانفرنس کیوں نہیں لیا ہم؟ آپ مسلمان اتنے بڑی داڑھی رکھتے ہوئے یہ کیا چکر؟ ارے یار ان چیزوں میں یہی رہتا. جہاں بے ضرورت آپ کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن بھی یہ کہتا ہے, فطرت انسانی بھی یہی کہتی ہے. برادران عزیز, میری کلیئر میسج آج کا لے جائیے, قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کو پکارو اور اللہ تمہاری مدد کرے گا دعاؤں کے ساتھ. نہ صرف مدد کرے گا بلکہ اللہ تم کو خلیفہ بنا دے گا, یعنی اس کی صفات کا جوہر تمہارے پاس عطا کرے گا. اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں. جب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو میرا میسج آج کا یہ ہے, تبرع ہر انسان کرتا ہے, ہر انسان کرتا ہے, فطری ہے برے سے نفرت کرنا. لیکن ہر جگہ آپ تبرع میں اظہار تبرع نہیں کر سکتے حالات کی بنا پر. رہبر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس بات کو جو ہے سمجھو. ابھی جو حال میں فتویٰ آیا جس کے بعد جامع اظہر یونیورسٹی کا وائس چانسلر لیٹر لکھتا ہے, اگر ایسے افکار ہو جائیں گے تو مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے گا. سلوات اللہ علیہ وسلم. ایک یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ مجھے آپ سے جواب دینا, اور میں تھنکر ہیں ماشاءاللہ, آپ لوگ نالجبل ہیں, مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے بہت اچھی طرح قرآن کی آیت, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, واعتصموا بحبل اللہ جميعا, سب مل کر اللہ کے اصولوں کو تھام لو, ولا تفرقوا, آپس میں بٹو نہیں, آپس میں بٹنے کا حکم نہیں ہے. کیا ہے یہ معنی ہے؟ افکار کو ایک جیسا بنانا آسان نہیں ہے. جو باپ سوچتا ہے بیٹا ویسا نہیں سوچتا, جو ماں کا سلیقہ ہے بیٹی کا سلیقہ ویسا نہیں ہے. مگر پورے کے پورے گھر میں متحد رہتے ہیں, اس لیے کہ باپ کی لیڈرشپ ہوتی ہے. تقاضا باپ کا یہ ہے کہ سب کے افکار کا احترام کریں اور اس گھر کو رہنمائی کریں حقائق کی طرف. انسانی معاشرے کے لیے انبیاء نے بھی یہی کیا ہے, باپ کی طرح سے دیکھا ہے, فکروں کو ایک دوسرے کے تضادات پر کام نہیں کیا ہے. ریسپیکٹنگ دی ڈفرنس آف اوپینین سکھایا ہے. میں نے 10 مجلسیں اسی مقام پر پڑھی ہیں اسی موضوع پر, یعنی دوسرے کے فکر کا احترام کرو, اپنے فکر کو لادنے کی کوشش مت کرو. جو فکر کو لادے گا وہ دین سے کوئی واسطہ اس کا نہیں ہے. مگر آپ آزاد ہیں فکر رکھیں جو بھی چاہے, مگر دلیل کے ساتھ رکھیے. آج کل یہ بات کہنے لگے ہیں عقیدے میں ہم تکلیف بھی نہیں کرتے. او ہو 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 ہو, ماشاء اللہ مجتہدین ہو گئے, بھی بہت نالجبل ہو گئے. کلمہ پڑھنا نہیں آتا, واش روم جا کر کے اپنے آپ کو دھونا نہیں آتا, اور وہ جو ہے کہہ رہا ہمارے عقیدے میں مجتہد کی بھی تکلیف نہیں ہے. یہ خود جہالت کی دلیل ہے. بیدار ہو جائیے. ہر چیز میں آپ کا فرض ہے کہ اس چیز کے پاس جائیے, اس شخص کے پاس جائیے جو نالجبل ہے. آج میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا فطرت کہتی ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ. جب گاڑی خراب ہوتی ہے تو میری فطرت کہتی ہے کہ جاؤ کس کے پاس, جو میکانک ہے. جب انسان اپنی دنیا کے لیے ہر مرتبہ کنسرن کرتا ہے, دین اتنا سستا ہے, جو چاہے اسلام بڑی محمد والے محمد. عجل فرج, ہم ذرا سا ہیوی ڈوز ہو گئے, لیکن خدا کے واسطے امید ہے کہ میرا مقصد, دعا کریے کہ ہم لوگ متحد رہیں, دلوں کے بغضوں کو نکالیں اور ٹینشن کو ریڈیوس کریں. اور آج انسانی معاشرے کو متحد ہونے کی ضرورت ہے, نہ صرف مسلمان کو. کاہے کے لیے اتحاد ہونا ہے؟ آج جو ظلم دنیا میں ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے. اسی لیے کیا کہا سرکار نے, میرا 12 فرزند آئے گا اور کیا کرے گا, یم لول ارد قسط و عدل بعد ما ملئت ظلم و جور. وہ آئے گا دنیا کو جسٹس اور اکویٹی سے بھرے گا. یا رسول اللہ کہیے اس حدیث کو, یم لول ارد اسلام و ایمانا بعد ما ملئت کفر و نفاقا, वो आएगा इस्लाम और ईमान तो भर देगा जबकि वो कुफ्र और निफाक से भर देगी। न, सरकार ने कहा अदालत इस्लाम है, इस्लाम अदालत है। अगर हम जस्टिस पे काम करें, आज हिंदुस्तान में हिंदू ब्रादर्स को जरूरत है आपके अफकार की, दीन के अफकार की, इसलिए दीन सिखाता है जस्टिस। आज मिलियंस आप हिंदुस्तानी हैं जिनके पास एक लुकमा भी नहीं पहुंच पा रहा है। आज डे बडे एक्सपीरियंस आपका एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, मजदूर की तनख्वाहों में कोई बढ़पन नहीं हो रहा है। आज एक एक चीज की महंगाई इतनी बढ़ रही है कि इंसान गरीब से गरीबतर हो रहा है। ऐसे माहौल में पयाम दीन दीजिए। पयाम दीन यह है यूफून बिन नद्र व यखाफून यौमन कान शर्रहु मुस्ततीरा ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وآسرا। छोटी सी फितरती बात बता दूंगा। मेरे घर में हम पांच अफराद हैं, रोटी खाई रहे थे, दरवाजे पे फकीर आया, मैं भूखा हूं, मैंने बड़ी हिम्मत करके रोटी दे दी। जब मैंने दे दिया, अगर मेरी बीवी देने लगेगी तो बच्चे कहेंगे अम्मी अब्बू ने दे दिया है। सवाल करने वाला एक ही है, देखिए मेरे साथ रही है, अब उसको दूसरी रोटी की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे देने लगेंगे तो माँ बाप ये कहेंगे बच्चों तुम खाओ, भूखे ना रहो, हमने दे दिया है। एक ही सवाल करने वाला है, बेगर एक है, पांच रोटियों की उसकी जरूरत नहीं है। देखिए अहले बैत कौन से घर का नाम है, तो सवाल करने वाला एक है, पूरे के पूरे रोटी देते हैं, कोई कंप्लेन नहीं करता कि तुम ना दो। यह है दीन। क्यों? दुनिया को सबक सिखाना है कि दीन नहीं सिखाता कि एक इंसान आगे बढ़ जाए, लन तनालुल बिर हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, और दूसरे पैर पीछे रह जाए। बता दिया इस दरे अहले बैत ने कि एक इंसान की कीमत बाप की निगाह में भी वही है, माँ की निगाह में भी वही है, हत्ता छोटे बच्चों की निगाहों में भी वही है। और इसीलिए पूरा सूरा उतर जाता है इनके फजाइल में पांच तीन दिन के रोजों में। तो पता चलता है कि किरदार साजी के लिए अहले बैत ने वो कुर्बानियां पेश की हैं जो आज तक किसी दीन ने नहीं पेश की। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अगर यहां तक हम पहुंच रहे हैं, तारीख कहती है कि जब शहजादी बच्चों को लेकर के गई है तीन दिन के बाद, बच्चों के पैर कांप रहे थे, तो सरकार ने देखा आंखों से आंसू निकले। सरकार ने फरमाया परवरदिगार क्या मेरे अहले बैत भूखो मर जाएंगे? आवाज कुदरत आए, जिब्राइल आए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फतिन अमजाद अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा, इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरिन व इम्मा कफूरा। इसके बाद पूरा सूरा इनकी शान में आकर के बताया, जो दुनिया सैक्रिफाइस करती है वो मकाम को हासिल करती है, जो इंसानियत जितनी ही आगे बढ़े इनसे पीछे ही रहती है, इनके मुकाबले में कोई आ नहीं सकता। और यही है करबला का रास्ता भी, जहां पर बच्चे जरूर बिलख रहे हैं, आवाज दे रहे हैं अल अतश। कहीं पर हमें तारीख में नहीं मिलता कि किसी बच्चे ने किसी के सामने रोटी का सवाल किया हो, ये कहा हो कि मेरे पास आज भूख है तुम खाना खिला दो। हम बैत करने के लिए तैयार हैं, अब्बू ने बैत नहीं की, हम तैयार हैं, मगर मालूम होता है कि 72 शोदा के साथ 4 साल बच्चे भी उसी आइडियोलॉजी के हामल थे जिस आइडियोलॉजी को इमाम हुसैन ने प्रेजेंट किया था। ये किरदार साजी के लिए ये मजालिसे भी हैं। उम्मीद है कि हम लोग इस किरदार साजी के उस मकाम तक पहुंचे। तारीख कहती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी रुख्सत के लिए जब तशरीफ लाए हैं तो 200 बच्चे थे और 80 औरतें थी, और सब देख रहे थे कि आखिरी सहारा जा रहा है। इमाम ने एक जुमला कहा, जैनब मैं जा रहा हूँ खुदा हाफिज, और ये याद रखो कि मेरे बाद तुम लोग मुसीबतों के लिए तैयार हो जाओ, यानी यहाँ के बाद तैयार होना है, तुम्हारे बाजू में रस्सी बांधी जाएगी, सकीना तुम्हें तमाचे लगेंगे, तुम्हें तैयार रहना है। जहाँ ये बताया कि क्या सिचुएशन आने वाली है, वहां पर ये भी बताया कि जैनब बहन तुम पलट कर नाना के रोजे पर जाओगी, ये भी बता दिया। और फिर इमाम हुसैन आए सैयद सज्जाद के पास, सैयद सज्जाद का शाना हिलाया। अब यहां पर रिवायत जनाब सैयद सज्जाद की है, कि जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि बाबा जो सफेद टायर है जो बैठा हुआ, जिसकी रेश सफेद हो चुकी है और लिबास में खून है, कोहनियों से खून जारी है। मैंने पूछा, बाबा आपका ये आलम है क्या? चचा अब्बास नहीं है? आजकल के साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी बेटे का एक्सीडेंट हो जाए, बाप को फौरन ना बता दो कि तेरा बेटा मर गया, मुमकिन है कि उसके दिमाग पर असर हो जाए। लेकिन ये कौन सा घर है? सैयद सज्जाद सुबह से बेहोश पड़े हैं, पूछ रहे हैं चचा अब्बास कहाँ है? मौला ने कहा मारे गए। कहा भैया अली अकबर? कहा मारे गए। अब ये सुनाओ ये जुमला, और ये रोने के लिए जिंदगी भर तक रोने के लिए काफी है। जुमला कहा, बेटा मर्दों में सिवाय तेरे और मेरे कोई नहीं। यानी इस जुमले में पूरे रोज़े आशूर के मसाए बयान कर दिए इमाम हुसैन ने। मर्दों में कोई नहीं है सिवाय तेरे और मेरे, और मैं भी जा रहा हूँ बेटा, खुदा हाफिज। और एक जुमला और भी सुनिए, हमने देखा है अहले बैत के किरदार में, 12 इमामों के मानने वाले हम हैं, हर इमाम जाने से पहले इमामत को हवाले करता है दूसरे इमाम आने वाले इमाम के, गोया ऑफिस का हैंडओवर होता है। जिस आलम में इमाम हुसैन ने इमामत को दिया है, जिस आलम में सैयद सज्जाद ने इमामत को लिया है, किसी इमाम ने इस आलम में नहीं लिया है। किस आलम में? सैयद सज्जाद कहते हैं कि मेरा बाबा जख्मी आया था और इस आलम में हवाले किया, कहा जाओ पलट कर जाना तो हमारे चाहने वालों को सलाम कहना और कहना शियाती माही चरित तुम माओ अदबिन बदगुरूनी, ऐ मेरे चाहने वालों जब कभी पानी पीना तो हमारी प्यास को याद करना। तो जुमला कहूँ, अब पानी में मजा क्या रहा? मौला कह रहे हैं जब भी पानी पीना हमारी प्यास को याद करना। शायद यही वजह है कि सैयद सज्जाद जब भी पानी को देखते थे करबला का रुख करते थे, अस्सलाम अलैकुम बेटा, ऐ मेरे प्यासे बाबा हमारा सलाम हो कतील अलअतशाम। पहले तो बहुत कम बाहर जाया करते थे, जब कभी मौला जाते थे छोटे छोटे बच्चे भागते हुए असाबों के पास जाते थे, मौला आ रहे हैं, मौला आ रहे हैं। इसलिए कि वहां पर क्या होता था, असाब जब मौला के आने की इत्तला मिलती थी बकरों के सरों पर कपड़े उड़ा देते थे। अगर कोई मिल जाता मौला पूछते, बताओ तुम जब जिबा करते हो तो क्या करते हो? तो मौला हमारा तरीका यह है कि जानवर को पानी पिलाते हैं, जानवर को पेशाब लिटाते हैं। तो कहते थे तुम्हें मालूम है मेरे बाबा को पानी नहीं दिया गया, मेरे बाबा को प्यासा जिबा कर दिया गया। इमाम मुसलसल करबला की इस प्यास को मुसलसल याद करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि जिस ब्रुटालिटी से जिस जुल्म से हमारा घर जिबा हुआ है, किसी घर में इस तरह की तबाही नहीं आई है। लेकिन ये इमाम जो बाप के प्यास को याद करता है, जब आपसे पूछा जाता है मौला कहाँ तकलीफ हुई, कभी करबला का नाम नहीं लेते बल्कि कहते हैं अश्याम अश्याम अश्याम। मेरी बेटियों के लिए, मेरी बहनों के लिए पयाम है, मेरा पयाम नहीं है, इमाम हुसैन का। करबला में पूरा घर लूट गया, इमाम ने नहीं कहा करबला में करबला में करबला में, बल्कि ये फरमाया कि मुसीबत सबसे ज्यादा जो हमें हुई है वो शाम है, इसलिए कि 800 कुर्सी नशीन थे और नबी की नवासियां दाखिल हो रही थी और कोई ये नहीं कह सक रहा था कि इन नवासियों पर चादर उड़ा दिया जाए, इन नवासियों को बचाया जाए, कोई बोलने वाला नहीं था। और जैनब ने एक मरतबा सैयद सज्जाद से पूछा, बेटा बता जरा नजब का रुख कहाँ है? नजब का रुख किया, बाबा आपकी बेटी दाखिल हो रही है। السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين.